फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कैफा तकफुरूना बिल्ला। और अब मैंने आपको क्या बताया था, कैफा जब आ जाता है ना, तो कैफा का मतलब होता है कि एक तो ये कि सवाल होता है, और दूसरा ये कैसे हो सकता है। जैसे माँ बच्चे को कहे ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम कैसे मुझे ये जवाब दे सकते हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो, मेरे साथ ये सलूक कैसे कर सकते। इसलिए क्योंकि कोई मान था, ठीक है। आपको किसी के ऊपर मान होता है ना, या किसी पे उम्मीद होती है, तो फिर आप जो कहते हैं ना, किस तरह से तुम ये कर सकते, वो कैफा है यहाँ पे। कैफा किस तरह, तकफुरुना बिल्ला, तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का। वह कुन तुम अमवातन, तुम तो कुछ थे ही नहीं, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं थी, यू नेवर एग्जिस्टेड। हल अता अल इंसानी हीन मिन दहरी लम यकुन शय मजकूरा। सूरह दहर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इतना ही जमाना इंसान के ऊपर ऐसा गुजरा है जिसमें वो कुछ काबिले जिक्र चीज था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। कहाँ थे आप जब आसमानों जमीन भी नहीं बने थे, आप कहाँ थे और मैं कहाँ थी, और जब रूहें भी नहीं हमारी बनी थी तो हम कहाँ थे। कितना जमाना पता नहीं कितना, हम तो कुछ हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना। अल्लाह तो ताला तो हमेशा से है, तो वो जो हमेशा से है उस वक्त हम कहाँ थे। हमें तो इतनी थोड़ी देर की जिंदगी मिल गई, इसमें ही पता नहीं हम क्या बन के बैठ गए। तो कैफा तकफुरूना बिल्ला, और किस तरह तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का, तुम कैसे करते हो ये, तुम कर कैसे सकते हो जबकि तुम तो कुछ भी नहीं थे। फाहिया कौम, उसने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें जिंदा किया, तुम्हें एक लाइफ दी। देखें अगर मैं और आप ना होते, ठीक है, सारी दुनिया की ऐसे चल रही होती, अपना निजाम चल रहा था, तो हमारे लिए क्या था, कुछ भी नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया, हमें जिंदगी दे दी, तो आज हम बोलते हैं, कहते हैं, गिले शिकवे शिकायतें और अल्लाह ताला के अहकाम पे एतराजात करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और कभी कुछ करते हैं। और यहाँ पे तकफुरूना सिर्फ कुफर वो नहीं है कि जो काफिर करता है, बल्कि ना शुक्री के लिए भी कुफर का लफ्ज आता है। कुफर शुक्र का ऑपोजिट है, कुफर का उलट क्या है, शुक्र। जो ना शुक्र है वो भी कुफर ही कर रहा है, मगर उसका डिफरेंट तरह का कुफर है। और एक है वो तो अल्लाह ताला का इनकार कर देता है, तू उसी का इनकार कर दे जिसने तुम्हें पैदा किया। सबसे बड़ा एहसान तो उसका है ना, जिसे पैदा किया, बाद में बाकी नेमतें बाद में आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि सारे इंसान मेरी इबादत करें, किस बेस पे फरमाया, कि तुम्हें पैदा करने वाला मैं हूं। वो कि अगर तुम पैदा ही ना होते, बाकी नेमतें तो बाद की बात है, बाकी नेमतों का जिक्र बाद में आएगा, तुम होते ही ना तो नेमतों का क्या सवाल था। तो सबसे पहली बात ये कि उसने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है, ये उससे पूछें जिसकी जान जा रही होती है। अब वो कहता है कि हाय थोड़ी लम्हों की जिंदगी मुझे मिल जाए। जिंदगी वो है जो कोई खरीद के नहीं ला सकता कोई, जिंदगी वो है जिसपे किसी डॉक्टर का इख्तियार नहीं, किसी वालदेन का इख्तियार नहीं, किसी हुकूमत का इख्तियार नहीं, वो चीज़ है जिंदगी जो सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, उसने तुम्हें दी है, तो उसका कितना बड़ा एहसान है। वो जो मर चुके हैं कौन है, जो इतना लोग रोएंगे, इतना लोग रोएंगे, लेकिन क्या कोई पूरी दुनिया दे के भी उनको जिंदगी दे सकता है, नहीं। इससे पता चलता है जिंदगी इंसान के इख्तियार में है ही नहीं, वरना कोई मरता ही ना। ये जो बड़े बड़े हुक्मरान और अपने आप को खुदा बनाए बैठे हो, वो तो कभी मरते ही ना, फिरौन भी आज घूम रहा होता। तो पता चलता है कि जिंदगी किसी के इख्तियार में नहीं, जिसके इख्तियार में तुम्हारी जिंदगी, ये जो चार सांसें तुम्हें मिली नहीं है ना, ये उसने इनायत की हैं तो तुम्हें मिली हैं, तुम कैसे उसकी नाशुक्री कर सकते। नाशुक्री के अंदर ये भी, अल्लाह के हुक्मों को ना मानना, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो ना करना, उसकी कदर ना पहचानना, उसके आगे ना झुकना, नाशुक्री ही तो है। वो बुलाए और हम ना आए, वो पैगाम भेजे कि हय्या अलस्सलाह और हम टस्से मसी ना हो, नाशुक्री ही तो है। फिर वो अपना कलाम भेजे अपने प्यारे नबी के जरिए और हम उसको तवज्जो ही ना दें। ना शुक्रिया तो है, ना शुक्रियों की बहुत सारी फॉर्म्स है, तो हम उसकी दी भी हर चीज को बस आप फॉर ग्रांटेड लें कि ये हमें मिलनी ही चाहिए थी, हमें डिजर्व ही करते थे, और उसके आगे अपने आप को ना झुका दें। सिर्फ नमाज की बात नहीं है, अपनी जिंदगी को झुका दें, अपनी मर्जी को झुका दें, अपनी ख्वाहिशात को झुका दें, हम ना झुकाएं तो ये नाशुक्री तो है। तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम कैसे उसको भूल सकते हो? जो उसको भूल जाना है वो नाशुक्री है, जिसने तुम्हें पैदा किया उसी को भूल गए। ये अल्लाह ताला का गिला है, इसमें वो दर्द समझे कि एक आप एक माँ होती है ना, जब वो अपने बच्चे को कहती है ना, बच्चा नाफरमान हो गया, बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बागी हो गया, बच्चा माँ को ही भूल गया, बच्चा माँ को ही जवाब देना शुरू हो गया खड़े होके उसके आगे, कहती है तो तुम ये कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है, आप उसमें वो दर्द समझते हैं कैसा होता है? तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह ताला का? उसने तो तुम्हें पैदा किया है, अपने हाथों से इंसान को बनाया है, सब चीजों को अपने हाथ से नहीं बनाया, कलमा कुन से बनाया, चंद एक चीजों का आता है कि उनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, तुम्हें अपने हाथ से बनाया, तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम्हें जिंदगी दे दी, सुम्मा यूमी तुकुम फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा यही कुम फिर तुम्हें जिंदगी देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तुरजाऊन जो है राजा से है, और ये वापस जाने को कहते हैं, और वापस वहीं जाया जाता है जहां से आए होते हैं, वरना तो सिर्फ जाने का लफ्ज होता है ना, ये नहीं है कि सिर्फ तुम जाओगे उसकी तरफ, नहीं लौटोगे, लौटना यानी उसी के पास से आए थे, उसी के पास वापस चले जाना। क्या है पहला वतन, क्या है जब तुम अल्लाह ताला के पास रूहों की फॉर्म में थे। अब मौत और हयात को थोड़ा सा इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मौत है रूह और जिस्म की जुदाई, और जिंदगी है रूह और जिस्म का मिल जाना। अब आपको समझ आ जाएगी। अब मुर्दा कब थे? वो नहीं जब आप रूहें भी नहीं थे, वो नहीं, वो जिस वक्त के आप रूहों की फॉर्म में अल्लाह ताला के पास थे वहां पे, ठीक है, वो मौत का है। अब अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा, एक जिस्म था जो माँ के पेट में वो डिवेलप हो रहा था, उसके अंदर इस रूह को डाल दिया, ये हो गई जिंदगी। और उसके बाद आप माँ के पेट से निकले और दुनिया में घूमे फिरे, अल्लाह अकबर, जो भी करना था किया हर अमल करके, फिर सुम्मा युमीतु को फिर ये जो मौत दुनिया में आनी है ना, ये है फिर ये जो सेकंड लिखा हुआ मौत, इसमें फिर रूह और जिस्म अलग हो गए, सुम्मा युहयीकुम फिर अल्लाह ताला उठाएगा, जिस वक्त कब्रों से उठोगे फिर से रूहें जिस्मों के अंदर चली जाएंगी, और फिर सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर उसकी तरफ लौट जाओगे, फिर उसकी तरफ जाके उसके हजूर खड़े होना उसकी अदालत में। ये है पूरी जिंदगी की कहानी, जहां कहां से शुरू है और कहां खत्म हो रही है, ये है तुम्हारी स्टोरी। इसके अंदर अमवात वाला टाइम कितना था? पता नहीं कितना लंबा टाइम था, क्योंकि पहले रूहें बनी, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक कितने हजारों साल गुजर गए, इसमें हम अमवात के टाइम में थे, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा सुम्मा युमीतुकुम पे आते हैं, बीच वाला बाद में करेंगे, फिर जो अब यहां से मर जाएंगे उसके बाद जब तक कयामत नहीं आती कब्रों में पड़े रहेंगे, वो भी पता नहीं कितना अरसा होगा, हजारों साल है या कितने, सुम्मा युहयीकुम फिर वो जब दोबारा जिंदा होंगे, वो तो खत्म ही नहीं होना, फिर उसके बाद मौत नहीं लिखा हुआ, फिर उसके बाद फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, बस फिर जिंदगी ही जिंदगी है। अच्छा अब आए वो बीच वाला जो पहला हयाकुम है, वो कितना है बताएं, वो कितना है? इन इन सारों से कंपेयर करें, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बहुत बड़ी बात हो गई अगर 100 साल भी मिल गए तो, वरना तो उससे भी पहले ही चले जाना है। सबसे शॉर्टेस्ट इसमें कौन सा है? फाहियाकुम, जिसके अंदर रहते हुए इंसान वो कुछ करता है इस मुद्दत में कि बस अपनी हमेशा की जिंदगी को खराब कर लेता है, और इसके अंदर इंसान के पास इतनी ख्वाहिशात हैं, इतनी ख्वाहिशात हैं कि जो पूरी ही नहीं होके देती, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इतनी ख्वाहिशात पालनी है, इतनी प्लानिंग है, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, इतना जमा करना है, इधर जाना है मैंने, ये सैर करनी है मैंने, वो कर, सारी प्लानिंग इसी की, और इसी के पीछे भागते भागते इसी को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाने में ही ये खत्म हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अगले दो स्टेजेस डिपेंड करते हैं, जो मौत है, क्योंकि मैंने आपको बताया मौत सिर्फ जिस्म और रूह का जुदा होना है। रूह को भी पता है, जिस्म को भी पता चलेगा, जो भी उसको जजा या सजा होगी। इससे पहले भी जो अमवातन था उसमें जिस्म और रूह जुदा जुदा थे ना, लेकिन रूहों ने जवाब भी दिया, इसका मतलब इतनी सेंस थी उनको कि ये हमारा रब है। जब अल्लाह ताला ने पूछा इनसे, तो इतनी उनको उनको इतना पता था कि पहचानते थे हमारा रब है। फिर सूरह अहज़ाब में आता है, अल्लाह ताला ने ये अमानत रखी अजीम जमीन व आसमान के सामने, तो उन्होंने नहीं कबूल किया, इंसान ने कबूल कर दिया, मैं ये अमानत का भार उठाऊंगा, ये मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले। तो ये फ़ाहियाकुम का वक्त जो है ना, सबसे मुख्तसर, लेकिन इसी की में इंसान इतना गुम हो जाता है और इतनी मेहनत करता है इसी को बेस्ट बनाने के लिए, कि उसको ख्याल ही नहीं रहता कि आगे के भी तो मरहले हैं, जो कभी ख़त्म ना होने वाला एक मरहला आएगा, फिर उसके लिए भी तो कुछ कर लूँ। गौर करें इस आयत के ऊपर और गौर करें कि अल्लाह ताला क्या गिला कर रहा है, कि तुम कैसे फिर भूल सकते हो अल्लाह ताला को, और उसका एहसान कितना बड़ा है। क्योंकि कोई और चीज़ के अंदर हम सोच सकते हैं कि भाई फलां का मेरे ऊपर एहसान है, फलां का मेरे ऊपर एहसान है, मैं जिंदगी कोई और नहीं दे सकता। फिर सिर्फ जिंदगी नहीं दी, हु अल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमिया, वो जात है जिसने पैदा किया लकुम, लिए तुम्हारे जो कुछ भी है जमीन में, मा जो फी में अल अर्द जमीन, जमीन कहने की तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन इसको री इन्फोर्स करने के लिए कि सब का सब जो कुछ भी है वो उसने पैदा किया, सारे का सारा तुम्हारे लिए। ऐसे लगता है कि इंसान कोई बहुत ही स्पेशल उसकी एक मखलूक है, जिसके लिए उसने जो कुछ भी जमीन पे है वो सारा पैदा किया। अब आप देखें क्या कुछ है जमीन पे, कई नदियां हैं, कई पहाड़ हैं, कई रेगिस्तान हैं, कई दरख्त हैं, कई चरिंद हैं, कई परिंद हैं, कई दरिंदे हैं, कई भेड़िए हैं, कई फूल हैं, कई पत्ते हैं, कई आसमान की छत खड़ी हुई है, कहीं जमीन के मैदान है, इतना कुछ है, काउंट इट, कई समुद्रों की मखलूक है, सबको तुम्हारे लिए। लेकिन हम सोचते हैं ये कौन सा मेरे लिए है, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है इसको चलाने के लिए हर एक का कोई ना कोई रोल है, कुछ भी नाकारा नहीं है कुदरत के इस कारखाने में, कुछ नाकारा नहीं, कुछ बेफायदा और बेमकसद नहीं है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज इंसान को सर्व कर रही है, यानी समझ लें ऐसे कि इंसान इस जमीन का शहजादा है, जिसके लिए सारी ये जमीन की चीजें बिछाई गई, इसको सजाया गया, इसके ऊपर चीजें रखी गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि इंसान होता और बस कुछ भी ना होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं, उसकी एस्थेटिक सेंस का भी ख्याल किया गया, उसकी लज्जत का भी सामान रखा गया, उसकी आराम का भी सामान किया गया, हर तरह से उसके ख्याल करने के लिए यहाँ पे चीजें रखी गई। अब आप देख लें जितनी चीजें आपको आराम देती हैं, सुकून देती हैं, मजा देती हैं, वो सब चीजें अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर मेरे और आपके लिए रखी, लकुम लिए तुम्हारे, ये नहीं कहा गया किसी बादशाह के लिए रखी, जो खास खास लोग थे उनके लिए रखी, जो भी इंसान है हर इंसान के लिए। इसका मतलब ये भी पता चलता है कि इस जमीन के रिसोर्सेस सारे इंसानों के लिए हैं, कोई एक कब्जा करके नहीं बैठ सकता कि हमारा ही है बस, हमने किसी और को नहीं देना, हमने किसी और को खाने नहीं देना, किसी और को यहाँ पे पीने नहीं देना, ये सब के लिए अल्लाह ताला ने रखी। दूसरा, इसके अंदर फुकहा ने बहुत एक जबरदस्त फिकही असूल इससे निकाला है कि देखो इस जमीन पे जो कुछ है ना, इसका मतलब वो हलाल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वो तुम्हारे लिए रखा है, हलाल है वो, सिवाय जिसका कह दिया जाए कि ये हराम है, ठीक है। बाकी सब तुम यूज कर सकते हो, बाकी सब तुम जैसे खा सकते हो, पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, उन चीजों को बरत सकते हो, तो वो सारी चीजें हलाल हैं, सिवाय जिनको हराम किया गया। इसका मतलब हराम चीजों की लिस्ट बहुत छोटी है, हलाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी जमीन पे जो जिस चीजें हैं वो हलाल हैं, फिर भी इंसान देखें जाके हराम में घुसता है हलाल को छोड़ के। हलाल ज्यादा है, हराम थोड़ा, इसीलिए हराम की लिस्ट दे दी गई, हलाल की लिस्ट नहीं दी गई। हलाल कह दिया कि सब कुछ ही हलाल है, तो कितना स्पेशल आपको फील होना चाहिए इसके बाद कि अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारे लिए इस जमीन को मैंने बिछा दिया, सजा दिया, और जितनी चीजें यहाँ पे पैदा की वो तुम्हारे लिए की। इसीलिए आप देखें सबसे ज्यादा जो चीजों को बरतता है वो इंसान इस्तेमाल करता है, कोई शेर नहीं इस्तेमाल कर रहा चीजों को इतना ज्यादा जिस तरह से इंसान करता है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई और चीजें, चरिंद परिंद, उस तरह यहाँ पे चीजों को नहीं इस्तेमाल कर रहे जिस तरह इंसान करता है। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उसको पैदा ही नहीं किया, फिर देखो उसके लिए कैसे जहान को सजा के रख दिया। सुभान अल्लाह, सुम स्तवा इल समा, फिर वो इस्तवा मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ, सब्बा हुन्ना सबा समावा, फिर उनको भी सात आसमान बना दिए अल्लाह ताला ने, फिर आसमानों को बनाया। अब इस सूरत में और सूरह हामीम सजदा में पहले जमीन की बात आई, फिर आसमान की आई, जबकि सूरह नाजियात में फिर जमीन की पहले बात आई और उसको अल्लाह ताला ने बिछाने की बात की, बल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा आया। तो पहले जमीन बनी या पहले आसमान बने, इसमें एक तफसीर में यह है कि बनाया तो अल्लाह ताला ने जमीन को पहले फिर आसमानों को, लेकिन जो उसको वहां पे सूरह नाजियात में पहले जमीन का जिक्र आया, तो वो इसलिए कि हमवार इसको बाद में किया, बना तो दी थी, हमवार करके इसके अंदर ये सारी चीजें पैदा करना ये बाद में किया, ठीक है। और अल्लाह ताला ने सबा समावात बनाए, हमें कुरान से पता चलता है कि आसमान सात हैं, और ये भी पता चलता है कुरान से कि जमीनें भी सात हैं। तो आसमान जो सात हैं वो कैसे हैं, क्या ये जो ऊपर हमें नजर आ रहा है वो तो कहते हैं खला है, साइंसदान कहते हैं बस ऐसे ही है, धुआं ही धुआं है, ये इसको आसमान कह देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आसमान कोई ठोस चीज है, इसीलिए तो सात आसमान है, जरा धुआं तो नहीं हो सकता ना कि धुआं धुआं है बस ये आसमान हो गया, कोई सॉलिड चीज है आसमान। मगर हाँ हमें ये पता चलता है वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, तो हमें पता चलता है आसमान दुनिया को अल्लाह ताला ने चिरागों से मुजयन किया, डेकोरेट किया, इसका मतलब ये चिराग सारे अल्लाह ताला ने लगाए ये आसमान दुनिया पे, यानी ये स्टार्स जो हैं ये आसमान दुनिया हैं, जितने सितारे सैारे हमें नजर आते हैं या जो नजर नहीं भी आ रहे वो सब आसमान दुनिया की ही जीनत है। तो इसका मतलब हम अभी नेक्स्ट आसमानों तक तो पहुंचे ही नहीं, और जमीन से आसमान तक का फासला 500 साल का, फिर एक आसमान की मोटाई 500 साल है, फिर वहां से दूसरे आसमान 500 साल, वो भी फिर 500 साल मोटा है, फिर उसके बाद वहां से तीसरे आसमान का फासला 500 साल का, इस तरह करते करते सातवां आसमान है, और उसके बाद हदीस में आता है 500 साल का फासला है उससे ऊपर, और फिर आगे फिर उन फरिश्तों के कदम स्टार्ट होते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर, वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। तो ये तो सबा समावात तो हम समझ ही नहीं सकते कि इंसान अभी तक पहले आसमान की चीजों तक ही नहीं पहुंचा, सितारे तक ही नहीं किसी तक पहुंचा, तो अपने सन तक, अब जो पहला सबसे करीबी सितारा है हमारे उस तक भी नहीं पहुंचा, तो आगे क्या पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है, हर चीज को जानने वाला है, सातों आसमानों को भी जानता है, जमीनों को भी जानता है, तुम्हें भी जानता है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी तुम्हें जानता था, आलीम है वो। आलीम मैंने आपको बताया था फाइल के वजन पर, ऐसा नहीं कि आज उसका इल्म इतना है तो कल को उसका इल्म बढ़ जाए तो इसका मतलब आज थोड़ा था तो कल को ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। उसका इल्म हमेशा है, मुस्तकिल है, ये उसकी मुस्तकिल एक सिफत है कि वो अलीम है, और ऐसा नहीं कि कभी घट जाए उसका इल्म, कभी बढ़ जाए। हम तो कई चीजें भूल भी जाते हैं ना, या हम कोई चीजें आज आज हम सीख रहे हैं तो पहले हमें नहीं आती थी, ऐसा नहीं है उसका इल्म। तो वो इतना इल्म वाला है, आलिम बहुत ज्यादा। एक होता है आलिम, आलिम का ये है कि आज उसके पास इल्म है, हो सकता है कल ना हो, या कल नहीं था और आज उसको इल्म मिला, और बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अलीम में इस एग्जेजुरेशन भी है और मुस्तकिल होना भी है। अब वो कहानी आती है तुम्हारे स्टार्ट की, तुम्हारा स्टार्ट कैसे हुआ, कब हुआ, जब अल्लाह ताला ने अभी आदम को तखलीक भी नहीं किया था तो आसमानों पे क्या हो रहा था, अभी उनकी रूह भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। तो एक डिस्कशन हुई थी आसमानों पे, और वो क्या थी, वो उसका यहां पे बताया जा रहा है। वह इज, और जब मैंने आपको बताया कि इज आ जाएगा तो क्या मतलब होगा, इज का मतलब है यानी कोई पुरानी बात याद दिलाई जा रही। वह इज कॉला रब्बुका, और जब कहा तेरे रब ने, किससे कहा, यानी पहली बात रब्बुका कह के, ये का से मुराद कौन है, तेरे रब, तेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पहले वही आप पे ही आई है ना, कि आपके रब ने जब कहा, किससे, मलाइका से, फरिश्तों से, एक यानी पता नहीं कितने लाखों साल, या जब भी इस जमीनों आसमान इस कायनात के पैदा होने से पहले ये एक कन्वर्सेशन हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कुछ फरमाया, क्या, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बनाने वाला हूं फिल अर्द जमीन में खलीफा, एक जानशीन। अच्छा, इस वक्त जमीन थी, क्योंकि इस वक्त कहा जाता है कि पहले यहां पर जिन्नात रहते थे, जिन्नात का बसेरा था, और जिन्नों ने इस जमीन के ऊपर बड़ा ही खून खराबा किया, यानी इंसानों के जमीन पे पैदा होने से पहले, आने से पहले आदम अलैहिस्सलाम के, यहाँ पे हर तरफ जिन्नात होते थे। फिर उनका जाहिर है जो उनके पता चलता है कि शर था इतना ज्यादा, इतनी वो थी, तो फरिश्तों ने उनको मार मार के फिर भगा दिया वो बियाबानों में और जंगलों की तरफ और सहराओं की तरफ और ऐसी समुद्रों की तरफ, इधर को भाग गए। यानी ऐसी, इसीलिए आप वीरान जगहों पे देखते हैं कि ये लोगों ने वहां पे बसेरा किया होता है जिन्नात ने। तो मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा किसको कहते हैं, खलीफा जो किसी का कायम मकाम हो, किसी की, एक तो वो होता है ना जो किसी की जानशीनी करे, हम यहाँ पे जानशीनी का मतलब तो नहीं ले सकते, लेकिन खलीफा का मतलब एक और भी होता है, और वो होता है पीछे आने वाला, यानी पीछे आने वाला यानी ऐसी एक मखलूक जो एक के बाद एक आएगी, पहले तो जिन्नात के पीछे आने वाले, फिर उसके बाद उनकी एक नस्ल आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर इस तरह से एक दूसरे के पीछे आएंगे। और भी खलीफा का मतलब ये होता है कि जब कोई किसी हायर पोजीशन पे होता है तो वो किसी को कोई जिम्मेदारी दे दे कि मेरा काम ये तुमने करना है, तो वो भी उसका खलीफा होता है, जिसको कहते हैं नाइब, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा हैं, के खलीफा थे, कि यानी क्या मतलब कि अल्लाह ताला की जो भी अहकामात हैं, जो भी अल्लाह ताला का दीन है, उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, अल्लाह ताला के दीन को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने उन खलीफा बनाया कि जमीन पे जाएं, अल्लाह की तौहीद बयान करें, अल्लाह ताला की हुक्मों को नाफिज करें, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक जमीन पे एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया और फरिश्तों को ये बात कही। इससे हमें एक बात सही समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि उसने जन्नत में ही रहना था। तो कोई लोग कहते ना ना आदम अलैहिस्सलाम वो फल खाते, ना ही हम दुनिया में आते, नहीं, अल्लाह ताला ने जमीन के लिए ही आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। हाँ, वो किस वक्त जमीन पे भेजना था, ये हो सकता है कि अर्ली आ गए हों इस वजह से कि उन्होंने वो फल खा लिया, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमेशा ही जन्नतों में रहना था, तो इस वजह से सजा के तौर पे उनको जमीन पे उतारा गया, ऐसा हरगिज नहीं। जैसे ही ईसाई लोग यही अकीदा रखते हैं कि इंसान को जमीन पे सजा के तौर पे उतारा गया। ठीक है, तो इंसान को बनाया ही जमीन के लिए गया था कि उसने जिंदगी यहां पे गुजारनी है, अल्लाह ताला की जो कवानीन, जो उसकी शरीयत है उसको यहाँ पे लागू करके फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के अल्लाह ताला उसको देगा अकल, समझ और फिर चॉइस की फ्रीडम देगा, आजादी देगा कि तुम खुद चूज करो कि तुमने क्या करना है, और फिर वो अल्लाह ताला इस तरह से उसका इम्तिहान लेगा। ये पहले से ही प्रोग्राम में शामिल था, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग थी। अच्छा, अब आगे जब फरिश्ते ये बात सुनते हैं तो एक तो खलीफा से पता चल गया कि वो इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे, इसका मतलब है उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी तभी तो इम्प्लीमेंट करेगा। वो यहाँ पे अल्लाह ताला का नाइब बन के रहेगा, उसको उसके दीन को लेके चलेगा यहाँ पे। तो इससे एक बात तो उनको समझ आ गई कि खलीफा मतलब है कि उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी। दूसरी एक बात थी कि वो देख चुके थे कि जिन्नों को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस थी और उन्होंने क्या किया उसके बाद, इतना यहाँ पे फसाद किया जमीन के ऊपर, इतना खून खराबा, इतना जंगो जदल किया उन्होंने और अल्लाह की नाफरमानियां की, तो वो ये जानते थे। अब ये इससे आपको पता चल गया कि उनके जहन में क्या है ऑलरेडी फरिश्तों के, ना उनको क्या चीज उनके नॉलेज में पहले ही है, क्या कि वो खलीफा होगा तो जाहिर है उसके पास एक अल्लाह ताला का ट्रस्टी होगा, कायम करेगा यहाँ पे आके अल्लाह ताला की शरीयत को, तो उसके पास चॉइस होगी, उसके पास जहन होगा, उसके पास दिमाग होगा। और दूसरी बात ये कि जिन्नों ने यहाँ पे तो बहुत तबाही मचाई है, तो वो आप कहते हैं आगे से, अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह तू बनाएगा इसमें ऐसे मखलूक को कुछ जो फसाद करे यहाँ पे। अब यहाँ पे खलीफा कहा गया, अभी इंसान नहीं कहा गया, ये अल्लाह का नाइब है, लेकिन पहले भी जो आए उन्होंने यहाँ पे फसाद किया, खून खराबा किया, तो उनके जहन में यही है और वो यही बात को लेकर कह रहे हैं कि क्या तू तो ऐसी मखलूक बनाने वाला है जो यहाँ पे फितने और फसाद करे, जो यहाँ पर खून बहाए। तो ये नहीं कि वो कोई एतराज कर रहे थे, ये याद रखें, वो कोई एतराज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस चीज की मसलियत को जानना चाहते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि सवाल करने के भी दो तरीके होते हैं, एक आपने वो देखा पीछे कि वो सवाल आया जो काफरों ने किया, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, ये क्या बात हुई, यहाँ पे ये भी सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल ये करना उनको गुमराही तक ले जाता है और हिदायत से दूर कर देता है। लेकिन फरिश्ते ये सवाल करते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर नाराज नहीं होगा, वो कहते हैं अल्लाह ताला ये तो फसाद करेगा, ये तो खून बहाएगा, इसका मतलब सवाल जो इल्म लेने के लिए पूछा जाए उसमें कोई हरज नहीं होता। वह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और अगर तस्बीह ही करने की बात है तो हम तो तेरी तस्बीह ऑलरेडी कर रहे हैं। तस्बीह क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी, तस्बीह करना एक तो सबाहा का मतलब पहले समझे, सबाहा कहते हैं पानी में तैरने को, ठीक है, और तस्बीह जब इंसान अल्लाह ताला की करता है तो तैरना कैसे होता है, ऊपर फ्लोट करना, यानी आप सिंक नहीं करते, आप डूबते नहीं हैं, आप ड्राउन नहीं होते, आप ऊपर ऊपर होते हैं, तैरते ऊपर है ना। तो तस्बीह का मतलब इससे कैसे निकला, तस्बीह हम कहते हैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, यानी अल्लाह ताला की जो शान है उसके मुताबिक उसकी पाकी बयान करना, कि उसको बरकरार रखना उसकी शान के मुताबिक जो चीज़ है उसके ऊपर, और उसकी शान को घटने ना देना, बल्कि जैसे तैर रहा होता है एक ऊपर होता है नीचे नहीं होता ना, तो हम अल्लाह ताला की जब तस्बीह बयान करते हैं तो हम उसकी पाकी बयान करते हैं, जैसे उसकी शान है उसके ऊपर ऊपर ही उसको, यानी उसके मुताबिक ही उसको रखते हैं, उसकी शान को घटने नहीं देते, नीचे नहीं करते। तो हम तस्बीह करते हैं, इसका पीछे इसका मीनिंग है, तस्बीह करने का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला को पाक करा देना, किस चीज से पाक, हर नक्स से, हर ऐब से, हर वीकनेस से, हर उस बुराई या हर उस फ्लॉ या हर उस कमी कमजोरी से जो अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है। हम वैसे वैसे तो औलाद होना, ये तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है और हम उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है। इसलिए तस्बीह वो होती है कि जो चीज अल्लाह की शान के लायक नहीं है उससे उसको पाक करार देना कि अल्लाह ताला उससे पाक है, अल्लाह ताला के अंदर वो नहीं है चीज। तस्बीह अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं उस तरह वो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, हत्ता कि जब वो कोई काम भी कर रहे होते हैं, जैसे कायनात के जो काम उनके हवाले किए गए हैं वो भी कर रहे हो, तब भी वो अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहते हैं। और बिहम्दी का, साथ हम्द के, साथ तारीफ के, साथ शुक्र के, और वह नुकद्दिसु लक, और हम तेरी, यहाँ पे भी अब तकदीस का लफ्ज़ या मुकद्दस का लफ्ज़ पाकी पाकी बयान करने का है, पाक करने का है। तो फरिश्ते ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं हर वक्त अल्लाह ताला को, जैसे हम कहते हैं ना बहुत मुकद्दस है, बल्कि फिजिकली भी पाक करते हैं कि सारे माहौल को पाक रखते हैं ऐसी चीजों से जो अल्लाह ताला के नाफरमानी की है। तो ये भी मुराद है कि हम तेरे लिए पाक करते हैं, यानी हम इखलास के साथ, ताजीम के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं। और हाँ, नुसब्बिहु के अंदर एक सिर्फ तस्बीह बयान करना नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि तेजी के साथ तैरना, इस ये माना होता है तेजी के साथ तैरना, तो फरिश्ते सिर्फ तस्बीह नहीं करते रहते बल्कि तेजी के साथ अल्लाह ताला के हुक्मों को बजा लाने के लिए वो काम करते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, तेजी दिखाते हैं इसमें। तो जब उन्होंने ये बात कही फरिश्तों ने, क्योंकि उनको समझ नहीं आया और उन्होंने कहा कि अल्लाह हम तो, अगर ये तस्बीह की बात है कि उन्होंने तस्बीह करनी है तेरी, तो हम तो ये करते ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया उनको, काला, उसने फरमाया, यहाँ पे किसने फरमाया, अल्लाह ताला ने, इन्नी, बेशक मैं आलमू, मैं जानता हूं, मा ला तालमू, जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे पता है मैं किस लिए इसको पैदा कर रहा हूं, वो तुम नहीं जानते। यानी इसका मतलब है कि सिर्फ तस्बीह करना, सिर्फ हम्द करना जैसी फरिश्ते कर रहे थे, वो सिर्फ मकसद नहीं है इंसान को पैदा करने का, लेकिन इंसान को पैदा करने में कोई और हिकमतें हैं जिनका फरिश्तों को इल्म नहीं था। अगर सिर्फ तस्बीह ही करानी होती तो वो तो फरिश्ते बहुत अच्छी कर रहे थे, इंसानों से ज्यादा अच्छी करते हैं वो, तो वो फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्द हर वक्त बयान करते हैं। तो फिर क्या चीज थी कि जिसका अल्लाह ताला को इल्म है और फरिश्तों को नहीं है, कि अल्लाह ताला इन इन्हीं इंसानों में, अल्लाह ताला जानता है कि कहीं अंबिया होंगे, कहीं रसूल होंगे, कहीं सिद्दीकीन होंगे, कहीं शुहदा होंगे, कहीं कोई औलिया अल्लाह होंगे, कई उलमा होंगे। देखिए, फरिश्तों के तस्बीह करने में और इंसानों की तस्बीह करने में बड़ा फर्क है। फरिश्तों की तो तस्बीह ऐसे है जैसे ऑटोमेटिक कोई चीज चल रही हो, लेकिन इंसान जब अल्लाह ताला के आगे सर झुकाता है तो वो अपनी राइट ऑफ चॉइस से झुकाता है। जब इंसान को कोई मजबूर नहीं कर रहा होता, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से अल्लाह के हुक्मों को मानता है। फरिश्तों को क्या पता, देखें अब सोचें, फरिश्तों को क्या पता कि भूख क्या चीज होती है, उन्होंने कभी भूख का मजा नहीं चखा, तो उनको क्या पता कि अल्लाह ताला की खातिर सुबह से शाम तक रोजा रख के भूखे प्यासे रहना क्या है। उनको क्या पता कि अल्लाह ताला की खातिर जान का नजराना पेश कर देना, ये क्या इसके अंदर मजा है। उनको क्या पता कि जब हर तरफ फितने हों, हर तरफ आजमाइशें हों, तो अल्लाह ताला की खातिर खुद को बचा बचा के चलना, ये क्या होता है। उनको क्या पता कि जब मुखालफतें हों, सब लोग अगेंस्ट खड़े हो गए, फिर भी अपने ईमान को बचाना, ये क्या चीज होती है। उनको क्या पता कि नरम और गरम बिस्तर से उठ के मुसल्ले पे खड़े होना, इसकी लज्जत क्या है। उनको क्या पता कि जब सजदे में जाके आंसू बहाना होता है तो वो कैसा होता है, उनको क्या पता, उनको क्या पता कि जब इंसान का दिल गम से फटता है और वो एक रब को पुकारता है और उसके ऊपर भरोसा करता है तो वो क्या होता है। बीमारियों में सब्र करना क्या होता है, मुश्किल हालात में दिल कड़ा करके फिर भी हलाल के ऊपर चलना क्या होता है, वो नहीं जानते, उनको नहीं पता। और यही अल्लाह ताला देखना चाहता था इंसान में, यही थी कि जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया कि वो कर सकेगा बुराई लेकिन फिर भी खुद को बचा बचा के चलेगा, वो सो सकेगा पूरी रात लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाएगा मुसल्ले पे, वो सजदे में जाके आंसू बहाएगा, वो तकलीफ में अल्लाह को पुकारेगा। तो फरिश्तों के साथ तो कोई हाजत भी नहीं है ना, ना उनको नींद है, ना उनको भूख है, ना उनको कोई जंगों में जाना है, ना उनको कोई मतलब फितने फसाद या आजमाइशें हैं इधर उधर कि वो उनसे बच बच के चल रहे हैं, ना उनको कोई बीमारियां हैं। और अल्लाह ताला को पता था कि जब किसी के किसी प्यारे की जुदाई हो जाएगी उसका गम कैसे होगा और उसका दिल कैसे फटेगा और फिर वो जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करेगा और उसको पुकारेगा वो कैसा होगा। किन में से कोई चीज फरिश्ते टेस्ट नहीं कर सकते, इंसान टेस्ट कर सकता है और इसका अपना मजा है कि जब इंसान अल्लाह ताला के आगे रोता है, जब इंसान अपने आप को सजदे में झुका देता है, जब इंसान अल्लाह ताला को पुकारता है, जब इंसान अल्लाह की खातिर कोई काम कर रहा होता है, उसका अपना एक मजा है। लोग मुखालिफ होते हैं और वो मुखालिफों से डरने की बजाय और जम जाता है अल्लाह के रास्ते पे, इसका अपना एक मजा है। तो वो इस मजे को नहीं जानते, वो इन बातों से आशना ही नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और आगे भी हम देखेंगे अगले लेसन में भी वो क्या चीजें थी जो फरिश्तों को नहीं पता थी, क्या बात थी जो फरिश्तों को नहीं पता थी जो अल्लाह ताला को पता थी। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
الحمد لله. آج کی آیات سے عمل کی باتیں امید ہے آپ نے لکھ لی ہوں گی. پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کلام پاک کی طرف کس نیت کے ساتھ آئے ہیں اور ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، وہی ہمیں یہاں سے ملے گا. دوسرے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد، یعنی جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم کتنی توجہ دیتے ہیں. تیسری، یہ چیز اپنے رشتوں کو ضرور ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے رشتے انٹیکٹ ہیں اور ہم اپنے رشتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یا نہیں. اور صرف کاٹنا اپنے رشتوں کا نہیں، دوسروں کی بھی رشتے داریاں کٹوانے کے لیے، دوسروں کے کان بھرنے اور ان کا تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے ساتھ ایسے کرو، تمہیں یہ آپ حکم دے رہے ہیں دوسرے کو، یعنی یہ دوسرے کو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ وہ اپنے رشتے کاٹے. تو رشتوں کو کاٹنا یا دوسروں کے رشتے کٹوانے میں ان کے لیے مشورے دینا سبھی گناہ ہیں. بعض شوہر اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر والوں سے نہیں ملنا، تم نے اپنے، اب وہ سوچتے ہیں کہ جب شادی ہو گئی تو بس اب اس کے بعد یہ بس، یعنی مجھے یا میرے گھر والوں کو ہی پوچھے، اب اپنے تو ساری فیملی کو بھول جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اعتدال میں آل دو ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا گناہ کا کام ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو یا والدین کو آپ نے کبھی فون نہیں کرنا یا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. تو یہ رشتہ کاٹنا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور فساد کرنا زمین میں، تو ہم دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کہیں فساد تو نہیں ہو رہا اس زمین کے اوپر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جہاں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اس احسان کا شعور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور کتنا بڑا یہ اس کا احسان ہے. اور پھر جب چیزوں کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے سارا جہان، تو اور زیادہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا، دیکھو کہ فرشتوں نے سوال بھی کیا، اور اگر انسان پھر وہی کام کرنے لگے جو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، اگر آج فساد ہی کر رہے ہیں اور اگر آج خون ہی بہا رہے ہیں، تو وہ کام تو نہ کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. واقعی اللہ تعالیٰ کا نائب بننا ہے اس دنیا میں. تو یہ کچھ عمل کی باتیں ہیں آپ کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم دعائیں بھی کرتے جائیں. تو اس آیت سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا واقعی اس زمین پر خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے، تو یا اللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی ناشکری کرنے والے نہ ہوں، اور رشتوں کو نبھانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے.